नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 5 राज्यों के दौरे पर। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 2 रूपये प्रति लीटर की कमी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत के संघर्ष को मजबूत करने के लिए एनआईए की विशिष्ट डिजिटल प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त चुनावी बॉन्ड डेटा का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। और लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के 5 दिन के दौरे पर जाएंगे। उनका दौरा आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान कई मेगा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में एनडीए के चुनावी अभियान का नेतृत्व करेंगे। वे पथनमथिट्टा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए केरल के दौरे पर पहुंचेंगे। श्री मोदी आज पथनमथिट्टा और मेवेलिकारा लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। वो पथनमथिट्टा में सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे, जहां लगभग 1 लाख पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से मयूषा की रिपोर्ट के साथ मृगनयनी पांडे।
प्रधानमंत्री कर्नाटक में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में भाजपा के महासचिव और विधायक सुनील कुमार ने बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री 16 मार्च को कलबुर्गी में और 18 मार्च को शिवमोगा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगले कुछ दिनों में कर्नाटक का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बारे में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आज रात या कल घोषित किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे विवेकानंद कॉलेज परिसर में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जिले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने कल दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी।
पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है। रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बने। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 अतिरिक्त गलियारों की आधारशिला भी रखी। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। असम के बारपेटा में कल एक रैली को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में भी एक रैली को संबोधित किया।
10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है मोदी जी के नेतृत्व। इसके पहले भी केंद्र में काम करते हुए आपने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा हो। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता।
देश में पेट्रोल और डीजल 2 रूपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रूपये प्रति लीटर, मुंबई में 104.21 रूपये, कोलकाता में 103.94 रूपये और चेन्नई में 100.75 रूपये लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87.72 रूपये, मुंबई में 92.15 रूपये, कोलकाता में 90.76 रूपये और चेन्नई में 92.34 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। समाचार कक्ष से सकलेन अख्तर।
भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए श्री तोबगे कल नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से दोनों पक्षों की अनूठी भागीदारी में प्रगति और समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। वो दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श कर सकेंगे। आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ भारत के संघर्ष को और मजबूत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में विशिष्ट डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस प्रणाली को तैयार किया है। इससे अभिकरण को आतंकवाद, नक्सली उग्रवाद और आपराधिक मामलों से बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस महीने की 12 तारीख को चुनावी बॉन्ड डेटा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया था। यह डेटा वेबसाइट www.eci.gov.in/candidate-political-party पर उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने हमेशा स्पष्टीकरण और पारदर्शिता को विशेष महत्व दिया है। ओडिशा के आईएनएस चिल्का पर आज अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पासिंग आउट परेड महिला अग्निवीरों सहित लगभग 2600 अग्निवीरों के कठिन प्रशिक्षण के सफल समापन को दर्शाती है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार इस पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 ओटीटी मंचों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें ड्रीम्स फिल्म्स, हंटर्स, हॉटशॉट्स, वीआईपी, प्राइम प्ले और अनकट अड्डा शामिल हैं। इन मंचों के साथ जुड़े 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया खातों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। जम्मू कश्मीर में विस्थापित और प्रवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने कल 350 युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। ये सभी युवा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित परिवारों, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और कश्मीरी प्रवासी परिवारों से संबंधित हैं। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक में 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि देश की रैंक पिछले 10 वर्ष में लगातार बेहतर हुई है। रूस में 3 दिन तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया। देश के पूर्वी क्षेत्रों चुकोटका और कामचटका में सबसे पहले मतदान शुरू हुआ। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने सबसे पहले वोट डाला। रूस के पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से लगे कोलिनिनग्राद में रविवार को भारतीय समयानुसार रात 11:30 पर मतदान बंद हो जाएगा। रूस में मतदाताओं को पहली बार ऑनलाइन मत डालने का विकल्प दिया गया है। यह विकल्प रूस के 27 क्षेत्रों और क्रीमिया, डोनबास तथा नोवोरोसिया के मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव से राष्ट्रपति पुतिन का शासन 6 वर्ष और बढ़ जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने देशवासियों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को 24-22, 11-21, 21-14 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु दक्षिण कोरिया के आन से यंग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम के तराई क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। 19 मार्च तक पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कल से 19 तारीख तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे जाने पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, एक मतदाता सूची से एक साथ चुनाव। नवभारत टाइम्स कहता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार बने चुनाव आयुक्त, जनसत्ता में है। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने लगाई मुहर। निर्वाचन आयोग ने चंदा लेने और देने वालों की सूची जारी करने पर जनसत्ता लिखा है, चुनावी बॉन्ड के खरीदारों में अरबपति कारोबारियों से लेकर कम चर्चित संस्थाएं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है नेताओं के चंदा मामा। भारत की प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा में उछाल को संयुक्त राष्ट्र का सलाम, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र कहता है मानव विकास सूचकांक में भारत का औसत सर्वश्रेष्ठ। व्यापार के बूते भारत बन सकता है $30 खरब की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की विशेष खबर है। पत्र लिखता है व्यापार सौदे करने में भारत का रिकॉर्ड। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। नव भारत टाइम्स ने इस सर्वे को प्रमुखता से दिया है कि सामान घटिया होने पर रिप्लेसमेंट और मुआवजा चाहते हैं उपभोक्ता। सेहत के लिए उत्तराखंड की हवा सबसे साफ, हिंदुस्तान ने इसे राहत भरी खबर बताते हुए लिखा है कि पहाड़ों पर चलने वाली हवाओं के कारण यहां ज्यादा प्रदूषण नहीं टिक पाता।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 5 राज्यों के दौरे पर। केंद्र ने देशभर में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 2 रूपये प्रति लीटर की कमी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत के संघर्ष को मजबूत करने के लिए एनआईए के विशिष्ट डिजिटल प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त चुनावी बॉन्ड डेटा का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।